उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, सृष्टि में सब कुछ उत्पत्ति विनाश युक्त है, बनता है, बदलता है, मिटता है, बिगड़ता है। अर्थात दृश्य मात्र क्षणभंगुर है, परंतु सर्व उत्पत्ति के आधार एवं सर्व प्रतीति के प्रकाशक परमात्मा अविनाशी हैं। वे ही अव्यक्त अविनाशी भगवान कभी कभी अपने व्यक्त विग्रह को लेकर संसार में आते हैं तथा अपनी प्रीति भरी दिव्य लीलाओं से अपने भक्तों का रंजन करते हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का कभी नाश नहीं होता। जब से मुझे इस बात का पता चला, तब से मैं बहुत आनंदित रहती हूं। अपने को समझाती हूं कि अगर तू सुंदर दृश्य ही देखना चाहती हो तो भुवन मोहन की श्याम सलोनी मधुर मूर्ति को देखो। उसको देखकर नेत्र सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे। सोचकर ही बड़ा आनंद आता है। रामावतार और कृष्णावतार की ललित कथाएं सुन सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था बचपन से ही। कभी कभी मैं गुरुजनों से पूछा करती थी कि जब भगवान आए थे इस पृथ्वी पर और इतनी प्रेम भरी लीलाएं उन्होंने की, तब मैं कहां थी। ऐसा मैं पूछती थी माताजी से, पिताजी से, दादी से, और मन ही मन बड़ा दुख लगता था कि न जाने मैं कहां थी। अगर उस समय मुझे पता चला होता कि भगवान इस धरती पर आए हैं, तो मैं उनसे चिपक जाती, उनको छोड़ती ही नहीं। अब क्या हो, बाजी हार जाने की तरह एक पीड़ा भीतर भीतर रहती थी। एक बार सत्संग के क्रम में स्वामी जी महाराज के साथ में बैठी थी। एक संत के मुख से मैंने सुना कि बारंबार प्रभु की लीलाएं दोहराई जाती हैं, प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में बारंबार रामावतार होता है, बारंबार कृष्णावतार होता है। जितनी बार त्रेता युग आएगा उतनी बार रामावतार होगा, और जितनी बार द्वापर युग आएगा उतनी बार कृष्णावतार होगा। सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आशा जग गई कि चांस है, अभी फिर लीला होने वाली है, तो बड़ी बढ़िया बात है। संसार के संबंध में नश्वरता के विचार से एक उदासी का भाव जगता था, वह उदासी दूर हो गई। सृष्टि का कण कण प्यारे प्रभु की प्रियता एवं दिव्यता से अनुप्राणित मुझे अति प्रिय लगने लगा। दृश्यों की परिवर्तनशीलता में चिरंतन नवीनता बनाए रखने की कलाकृति को देखकर अनुपम अलौकिक कलाकार पर मैं बलिहारी जाती हूं। इस दृश्य जगत को भी वे कितना प्यार करते हैं। वे अपने अलौकिक रूप से इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, अपने अनंत माधुर्य से इसकी मधुरिमा बढ़ाते हैं, अपने अनंत ऐश्वर्य से इसका नियमन करते हैं। आह, यह जगत भी धन्य है, जो प्रेम स्वरूप की विहार स्थली है, इस लोक के वासी होकर रहने में भी बड़ा आनंद है। जहाँ वे अरूप रूप बनाकर आते हैं, हमारे नयनों के विषय बनकर सर्वेंद्रियों सहित हमको अपने मधुर प्रेम के अथाह सागर में विलीन कर लेते हैं। धन्य है प्यारे प्रभु, धन्य है मानव और धन्य है यह वसुंधरा। ये सब रहस्य की बातें सत्संग के प्रकाश में, संत की वाणी में मुझे प्राप्त हुई। इस समग्र सृष्टि में अगर किसी दृश्य को हम लोग दिव्य कह सकते हैं, नित्य कह सकते हैं, तो वह अवतारी पुरुष की लीलाएं हैं। यह बात मुझे ठीक लगी, जंच गई इस आधार पर कि उनकी लीलाएं दिव्य हैं। उनकी दिव्यता का प्रमाण यह है कि प्रत्येक कल्प की पुनरावृत्ति में, प्रत्येक युग में वे अपने ढंग से आते ही रहते हैं, अपने बच्चों को प्रेम प्रदान करते ही रहते हैं। बारंबार यह बात होती रहती है। चिर पुरातन चिर नवीन का विशेषण सिद्ध होता रहता है। उनकी दिव्य लीलाओं में और सृष्टि के अन्य दृश्यों में बड़ा भारी अंतर है। सुख दुख के भोगी संसार में आए गए, अनेकों बार जन्म हुआ, मरण हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जन्म में जो कुछ घटनाएं घटित हुई हों वो फिर दोहराई जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। सब कुछ परिस्थितियों के साथ बदलता जाता है, कर्म के साथ बदलता जाता है, लेकिन प्यारे प्रभु ने नरलीला जो इस धरती पर की है, वे लीलाएं दिव्य हैं, वे स्वयं दिव्य हैं, और इसका एक बहुत अच्छा आनंददायक परिणाम हम लोगों के लिए यह है कि आज भी उनके भक्त जिस भाव से उनको प्यार करते हैं, उस भाव का आदर करके उसी रूप में उनको दर्शन भी देते हैं और उनके साथ में विविध लीलाएं भी करते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहता है। एक उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ, सच्ची घटना है। वे सज्जन अभी स्वशरीर विराजमान है। पुरुलिया में एक सज्जन मिले थे मुझे, उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि मैं बैठा था, रामायण का पाठ हो रहा था, खूब बाजा बज रहा था, झाल मजीरा बजाकर स्वर के साथ पाठ किया जा रहा था, हनुमान जी का मंदिर था, खूब रोशनी हो रही थी, ट्यूबलाइट्स बहुत से लगाए गए थे और बड़ा समारोह था। उसमें मैं बैठा पाठ कर रहा था। मैं ब्राह्मण हूँ, बैंक में नौकरी करता हूँ। मित्रों ने मुझे बुला लिया था कि चलो पाठ में शामिल हो। मैं सबके स्वर में स्वर मिलाकर गा ही रहा था, इतनी ही देर में पता नहीं सब दृश्य कहाँ गायब हो गया। न लाइट है, न बाजा गाजा है, न धूमधाम है, न लोगों की भीड़ भाड़ है, कुछ नहीं, सब कहाँ गायब हो गया। और मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ मिथिलापुरी में, जनकपुर की सभा में, धनुष यज्ञ की भीड़ में मैं बैठा हूँ, और रंगभूमि में उसी जगह पर बड़ा विशाल धनुष रखा हुआ है। और मैंने देखा कि गुरु महाराज के पास बैठे हैं राजकुमार कौशल किशोर, गुरु जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। पाठ में इस चौपाई के गाते ही गाते गाना और शरीर और संसार, मंदिर और पाठ स्थान सब खत्म हो गया और जनकपुर के धनुष यज्ञ का दृश्य वहां उपस्थित हो गया और चारों ओर खूब भीड़ लगी है और राघवेंद्र सरकार के प्रकाश से यज्ञ भूमि में चारों ओर जगमग जगमग हो रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि श्री राम लला जी उठकर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मंच से उतरकर एक एक कदम बड़े धीरज से और बड़ी स्थिरता से रख रहे हैं। मैं देख देख कर मोहित हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। सभा में सब लोग एकदम सन्नाटे में चुपचाप बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि बड़े बड़े वीर वहां हार चुके थे, सब लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे कि 15 वर्ष का राजकुमार अति सुकुमार बालक विकराल धनुष तोड़ने जा रहा है। इसलिए सब लोग एकदम आश्चर्यचकित थे ही और इधर राजकुमार धीरे धीरे अपनी राजसी चाल में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आ रहे थे धनुष के पास। उनके दर्शन से इतना आकर्षण हो गया, उनके मुख के प्रकाश से और उससे फैलने वाली मधुरता से मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था माता जी, मैं क्या बताऊं, पता नहीं मैं कहां था। आप सुन रहे हैं, यह अनुभव है एक मानव का। अब आप देखिए, दिव्य दर्शन के रस में अहम का पता कहां रहेगा। वो ब्राह्मण युवक लीन हो गया था उस प्रेम में और संयोग की बात थी कि उसके साथ मेरे पास वहां के मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता बैठे थे। वे भाई रामायण के उस पाठ के भी आयोजक थे और इस ब्राह्मण युवक के साथ वे भी पाठ में शामिल थे। तो युवक अपने आनंद की बात सुना रहे थे मुझको। उन्होंने उस आयोजनकर्ता की ओर बहुत ही अनख की दृष्टि से देखा और कहने लगे कि माताजी देखिए, यह दुर्गा प्रसाद जो है आपके पास बैठा है, इसने बड़ा दुख दिया मुझको। पाठ के बीच में इसने सोचा कि ब्राह्मण सो गया है तो मेरी बांह पकड़कर मुझको हिला दिया। कहने लगा कि पाठ करने आया है कि सो रहा है, उठ। माता जी मैं सो नहीं रहा था, मैं तो अलौकिक आनंद में था। क्या देख रहा था मैं, कहां था, कैसे क्या हो गया, मुझको कितना आनंद था, कितना आनंद था, यह मुख से कहने की बात नहीं है। और मेरे इस भाई ने पकड़कर मुझको हिला दिया। बस पलक मारते ही दृश्य बदल गया। फिर तो वही झाल मजीरा सुनाई देने लगा, यही चौपाइयां सुनाई देने लगी, बत्ती दिखाई देने लग गई, मंदिर दिख गया और मैं कहां से कहां आ गया। तो वह रूप उस दिन से मेरी आंखों से निकला नहीं है। मैंने उनको कहा नहीं था कि मुझे दर्शन देना, मैंने उनको कहा नहीं था कि अपनी मोहिनी मुझ पर डालना, और बिना मेरे कहे उन्होंने मुझे दर्शन दे दिया, अपनी मोहिनी मुझ पर डाल दी। माता जी, अब तो मैं दुनिया के काम के लायक नहीं रह गया। किसी प्रकार से घर बार चला रहा हूं, किसी प्रकार से नौकरी चल रही है, दिन रात वह मोहिनी मूरत मेरी आंख में बसी हुई है। अब मैं तड़प रहा हूं कि प्यारे कब मुझको अपने प्रेम स्वरूप में मिला करके मेरे जीवन को पूरा करेंगे। देखिए, इसी असार संसार में उस युवक ने दिव्य चिन्मय का दिव्य दर्शन पाया, नाम रूप लीला और धाम की दिव्यता सिद्ध हो गई इस उदाहरण से। और बाकी इस संसार का क्या हाल है कि ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से, जगत के संपर्क से जिन दृश्यों को हम देखते हैं उनको दोबारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पलक के गिरने और उठने के बाद आप भी बदल गए और वह दृश्य भी बदल गया। तो इतना परिवर्तनशील दृश्यमान जगत है जिसमें निरंतर परिवर्तन है, जरा सी देर के लिए भी जहां ठहराव नहीं है, ऐसे अनित्य जगत में वे लीलामय दिव्य रूप लेकर आते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं और हमारे आपके बीच अद्भुत अद्भुत क्रीड़ाएं कर जाते हैं जो बड़ी ही मनोहारिणी है। ये लीलाएं इस मृत्यु भुवन में होती हैं, परंतु लीलाएं स्वयं दिव्य होती हैं, उनका नाश नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने, महापुरुषों ने, संसार के कल्याण का मार्ग दिखाने वालों ने हम लोगों को बताया कि अगर तुमको दृश्य ही पसंद आता है तो उस दिव्य दृश्य पर दृष्टि डालो। अगर तुमको नाता रिश्ता संबंध जोड़ना ही पसंद आता है तो उस दिव्य अवतारी से संबंध मान। राम विवाह की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, मिथिला की नारियां कह रही हैं। मिथिलापुरी में विदाई के पहले सखी सहेलियों की बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बहुत प्रीति भरी बातें कही और प्रीति के ग्राहक रसिक शिरोमणि कौशल किशोर सुन सुनकर प्रेम विभोर होते जा रहे थे। प्रेमियों की प्रेम भरी बातों को सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय लग रहा था। सखियों का अनुरोध था कि हे लालन, आप चले जाएंगे तो दर्शन के बिना हम कैसे रहेंगे, हम नहीं रह सकेंगे। सबको मालूम था कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक विवाह इनका हो गया, अब तो हम इनके महल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। फिर भी वे मधुर प्रीति से पगी हुई सखियां प्रवाह में कहती चली जा रही हैं कि हे लालन, हम किशोरी जी की दासी होकर रहेंगी, हम आपके राज्य में महल के बाहर फूस की झोपड़ियां बनाकर रहेंगी। अब आप देखिए, ऐसा कह रही हैं राजमहल की राजकुमारियां। किशोरी जी के साथ थोड़े समय के आगे पीछे 13 सखियां मिथिलापुरी में अवतरित हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आप दोनों के दर्शन के बिना किसी प्रकार नहीं रह सकती हैं। बड़े से बड़ा त्याग, बड़ी से बड़ी कठिनाई उठाने की बात उन्होंने कही और कहा कि बस अब इतना ही है कि हमारी प्यारी किशोरी जी के संबंध से आप हमें अपनी करके माने। ये अपनापन अवश्य निभाना, इतना कहां सहन होता उस प्रेम स्वरूप से। सखियों के हृदय में अगर सीमित प्रेम भाव उमड़ रहा है तो उस असीम अनंत में असीम भाव उमड़ रहा है। और वहां उन्होंने कह दिया कि अच्छी बात है सखियों, आपने जो किया मेरे लिए सो किसी ने नहीं किया। मैं आप ही का हूं, मैं सदा सदा से आपका हूं और आपका होकर रहूंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा कह दिया उन्होंने। और जैसा कहा वैसा किया। आज भी उस क्षेत्र में कई भक्त लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि वहां पर इस भाव से अनेकों भक्त युगल सरकार की उपासना करते हैं और इस बात को मानते हैं कि वे रस शिरोमणि मिथिला छोड़कर गए नहीं। आज भी उन लोगों को वहां पर जुगल जोड़ी का दर्शन होता रहता है, मुलाकात होती रहती है। कलिकाल में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना संभव है। और इन सारी बातों से, इन सारी बातों के ध्यान में आने से मुझे यह बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर दृश्य देखे बिना अपने को सुना सुना लगता है, देखना ही पसंद है, तो उस दिव्य लीला को ही क्यों न देखो जिसका कि कभी नाश नहीं होगा। नाम लिए बिना अपने से नहीं रहा जाता है तो उस दिव्य नाम को क्यों न लो जो सब प्रकार से तुम्हारा लोक परलोक संभाल लेगा। संबंध माने बिना अकेले तुमसे नहीं रहा जाता है तो उस नित्य संबंधी से संबंध क्यों न मानो। सब समय साथ देगा, बहुत अच्छी बात है, यह सब हो सकता है, परंतु कब, जब हम पसंद करें तब। अगर कोई नापसंद करे तो भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने से रहा कहां जाता है। और भी बढ़िया बात है, देखिए अगर बिना देखे बिना जाने प्रेम स्वरूप परमात्मा से डायरेक्ट सीधा विश्वास करके संबंध आप न मान सकें तो किसी भगवत अनुरागी संत के कहने से मान लेना चाहिए। ऐसा भी होता है, जीवन की आवश्यकता देख कर भी उनको अपना मानता है आदमी, गुरु के वाक्यों को सुन करके भी मानता है, सदग्रंथों के वाक्यों को पढ़ करके भी मानता है। ये तीनों ही आधार हैं। अपने में आवश्यकता है, रहा ही नहीं जाता बिना संबंध माने तो। नित्य संबंधी से ही संबंध मानना अच्छा है। उसके अतिरिक्त इस जगत में ऐसा संबंध क्या माने जो बन भी जाता है, बिगड़ भी जाता है। मीरा जी ने कहा था ना, ऐसे वर को क्या वरूं रे, जो जन्मे मर जाए, वर वरिये एक सांवरिया रे, सुड़ल अमर हो जाए। मीरा जी ने नित्य संबंधी को अपना माना था, वे चिर सुहागिन हो गईं, अचल सुहागवती हो गईं हमेशा के लिए। फिर कभी उनको दुख देखना नहीं पड़ा। इसी प्रकार भक्त जन जो हैं, संत जन जो हैं, हम लोगों को दुख से छुड़ाने के लिए, अमर आनंद देने के लिए, अनंत रस का पात्र बनाने के लिए सलाह देते हैं कि संबंध माने बिना तुमसे रहा नहीं जाता है, तो उस नित्य संबंधी को अपना मानो, जो लोक परलोक सब निभा देगा, यहाँ का भी और शरीर के त्यागने के बाद का भी सब कुछ पूरा कर देगा, क्योंकि समर्थ हैं वे। अब मनुष्य की बड़ी भारी बहादुरी है कि वह बिना देखे बिना जाने को अपना मान करके उस पर अपने को समर्पित कर दे। बड़ी भारी बहादुरी है, और उसकी इसी बहादुरी पर रीझ करके परमात्मा उसकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जिसके संबंध की स्वीकृति मात्र से अपनी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, उसी से संबंध मानना सार्थक है। हाँ, प्रकृति के विधान से जो मनुष्यों से संबंध बन गए हैं, अपने जुट गए हैं, उनमें से कुछ हमने जानबूझ करके सचेत होकर के जोड़े, और कुछ शरीर के जन्म से संबंध जुट गए, तो इनको साधन रूप दे दिया जाए, इनको सत्य नहीं माना जाए। थोड़े दिनों के लिए संयोग बना है ऐसा जानकर जिसके साथ जितना अच्छा बन पड़े सब व्यवहार किया जाए, और फिर संबंध कभी न माना जाए। हमारा इनसे सीधा अपना संबंध नहीं है, इस सत्य को स्वीकार किया जाए। शरीर के नाते भौतिकवाद की दृष्टि से सभी प्राणी एक हैं, अध्यात्मवाद की दृष्टि से सभी निज स्वरूप हैं, ईश्वरवाद की दृष्टि से सब मेरे प्यारे के प्यारे हैं। दार्शनिक दृष्टिकोणों को लेकर के पति पुत्र संतान माता पिता भाई बहन सबके साथ व्यवहार करो। तो उनका चिंतन छूट जाएगा, और याद किसकी रहेगी? जिसके नाते से आपने उनकी सेवा की थी उसकी याद रह जाएगी। फिर तो आप इस रस में पगे रहेंगे कि सब कुछ तेरा, केवल तू ही मेरा, बड़ा आनंद रहेगा। अब कोई कहे कि कुटुंबियों का मोह और संपत्ति का लोभ हम छोड़ ही नहीं सकते, तो इतना भी साहस हम नहीं कर सकते, कैसे काम बनेगा भाई? आप चाहते हैं मरणशील शरीर को लेकर मृत्यु भुवन में रहते हुए उस अजन्मा उस अनादि अनंत परमात्मा के परम प्रेम के पात्र हम बन जाएं, और वे प्यारे प्रभु आ करके हमको लार दुलार करें, प्यार करें, गोदी में बिठाएं, संभालें, जैसे कि अन्य भक्तों के साथ उन्होंने किया। इतनी बड़ी बात आप चाहते हैं? अशरीरी त्रिगुणातीत सबसे परे प्रेम के वश होकर मेरे लिए दो हाथ दो पांव बनाकर मेरे पास आ जाए और रूप माधुरी का पान करावे, इतनी ऊंची अभिलाषा आप रखते हैं? और अपनी ओर देखिए, अपने माने हुए मिथ्या संबंधों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है। एक बार महाराज जी कहने लगे कि देखो, मनुष्य के हृदय के प्रेम भाव का आदर करने के लिए वह ब्रह्म भाव को छोड़कर जीव भाव स्वीकार करता है और उस प्रेम का आदर करने के लिए तुम अपनी तुच्छ ममताओं को नहीं छोड़ सकते। और फिर कहते हो कि हम ईश्वर विश्वासी हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं। भैया, इस प्रकार प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश नहीं होता है। अतः मैं अपने आत्मीय सभी भाई बहनों से बड़ी नम्रता से निवेदन करती हूँ कि अनमोल अवसर है, हम लोग चूके नहीं। जिन्होंने अपने प्रेम के विस्तार के लिए ही हमें रचा है, वे तत्पर हैं हमें अपनाने में। मानव हृदय ही तो वह माध्यम है जिससे प्रेम स्वरूप की मधुरता विश्व में प्रकट होती है। अपना हृदय पट हम खोलें। उधर उन प्रेम स्वरूप में रस उमड़ रहा है हमें भरने के लिए। अब आप शांत हो जाए। सुख दुख दिन रात के समान अपने आप आने जाने वाली वस्तुएं हैं। सुख की दास्ता और दुख का भय व्यक्ति के विकास में बाधक है। सुख सेवा और दुख त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। अतः सुख में उदार तथा दुख में विरक्त रहना अनिवार्य है। सुख न चाहने पर भी अपने आप चला जाता है और दुख बिना ही बुलाए स्वतः ही आ जाता है। सुख जाने में और दुख आने में स्वाधीन है, सदैव रहने में दोनों ही असमर्थ हैं। सुख का प्रलोभन और दुख का भय आए हुए सुख दुख का सदुपयोग नहीं करने देता। दुख का पूरा प्रभाव दुखी पर हो जाने से सुख की दास्ता अपने आप मिट जाती है, जिसके मिटते ही दुख सदा के लिए चला जाता है। अतः आए हुए दुख का पूरा प्रभाव होना आवश्यक है।